जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। जय यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन। जय यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय गौरांग नेता गौरांग नेता Gaurang Nitai, Jai Gaurang Nitai. Jaya Jai Prabhupad, 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 Jaya Jai. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. Gaur Premanandi, Harinam Sankirtana Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. ॐ अज्ञान्ति मिरान्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च अदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज श्रीराधाष्टमी महामहोत्सव में सबका स्वागत है। तो राधाष्टमी उत्सव हम श्रीमती राधारानी के बारे में चर्चा कर सकते हैं उनकी कृपा से, कि अपनी तो पात्रता नहीं, लेकिन श्रीमती राधारानी के तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तप्त कांचन गौरांगी, जो सुवर्ण कांति, और कौन है? वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की महारानी है, ईश्वरी है। तो कई बार इस भौतिक संसार में श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा होती है कि कोई साधारण स्त्री है, या कोई बहुत ही संसार में जैसे कोई तरुण युवक युवती है, वैसे कोई इसमें यहाँ पर संबंध है। लेकिन श्रीमती राधारानी एक कोई भौतिक सर्वसाधारण जीव या व्यक्ति नहीं है, ये पूरी तरह से सच्चिदानंद चिन्मय ऐसा स्वरूप है जो इस भौतिक संसार में यहाँ तपस्या करते हैं, इस भौतिक संसार के सारे मोह जाल से मुक्त होना चाहते हैं और अपना पूरी तरह से ध्यान जो है भगवान कृष्ण की ओर करना चाहते हैं, अपना सब कुछ भौतिक संसार का जो भी जुगाड़ किया है सब कुछ गंवाकर वो कृष्ण को समर्पित करना चाहते हैं, और ऐसे कृष्ण किससे आकर्षित है? श्रीमती राधा रानी से आकर्षित है। कृष्ण सर्व आकर्षित ही थी, कृष्ण जो सबको आकर्षित करते हैं। ममे वांश जीव लोक के जीव भूत सनातन, सनातन काल से जीव जिनके अंश है, जो सब जीवों को आकर्षित करते हैं, लेकिन वही कृष्ण जो है इस संसार में मदन मतलब काम भौतिक इच्छाएं, ये भौतिक इच्छाएं जो है यहाँ पर हमें जकड़ कर रखती है, लेकिन मदन मोहन कौन है? कृष्ण है। जो भौतिक कामना इच्छाएं के जो बंधन में रहते हैं उनको मदन मोहन कृष्ण आकर्षित करते हैं अपने ओर, और श्रीमती राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी है। जो मदन मोहन है उनको भी वो आकर्षित करती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब रास मंडल में भगवान कृष्ण खाली इच्छा करते कि मुझे आनंद प्राप्त करना है, तो जैसे इच्छा होती है वाम भाग से उनके ही स्वरूप से एक अलग स्वरूप वहां पर प्रकट होता है, वो है श्रीमती राधा रानी। जो रास मंडल में प्रकट हुई इसलिए रा, और जैसे ही श्रीमती राधा रानी प्रकट होती वो तुरंत भागते कहां पर? फूल इकट्ठा करके कृष्ण को चरणों में समर्पित करने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए फूल इकट्ठा करने तुरंत भागती है। धावयमान जो है जैसे वो प्रकट होते तुरंत सेवा के लिए भागती है, धावती। तो राधा तब जो रास मंडल में प्रकट हुई, जो अनुराग प्रेम के स्वरूपा है, और धा मतलब धावती जो सेवा के लिए धावमान है। इस प्रकार से राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाय शास्त्र परमान। श्रीमती राधा रानी शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। जैसे हमारे माधव गोपाल प्रभु ने सुबह कृष्ण राधा तत्व इतना सुंदर वर्णन किया है कि जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य और सूर्य की किरणें जो है उसको अलग नहीं कर सकते। सूर्य की किरणें मतलब सूर्य सूरज, और सूरज मतलब ही सूरज की किरणें हैं। तो वैसे सूरज शक्तिमान है, किरणें जो शक्ति है, लेकिन ये अभिन्न है। वैसे श्रीमती राधा रानी जो है ये राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाय शास्त्र प्रमाण, ये दोनों में जो है कोई भेद नहीं है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है और आगे बताते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाल्लाद स्वरूपिणी। कृष्ण को आनंद देने के लिए अपने ही स्वरूप से शक्ति प्रकट होती है, वो श्रीमती राधा रानी है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि कृष्ण के आह्लादे ताते नाम लादिनी सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। कृष्ण के आनंद देने के लिए, कृष्ण को आनंद देने अपने ही स्वरूप से शक्ति प्रकट की है, और सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी, स्वयं कृष्ण जो है उससे आनंद या सुख आस्वादन करते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान की शाश्वत संगिनी है, अभिन्न है। तो वर्णन आता है कोई अगर खाली रा भी कह देता है, रा भी उच्चार करता है, तो कृष्ण के चरणों की ओर उसकी प्रगति होने लगती, खाली राह बोलने से ही। और सारी गोपियां जो है ये श्रीमती राधारानी के केश रंध्र जो है इससे प्रकट होती है। और जो महालक्ष्मी है, श्रीमती राधारानी का जो वाम भाग है, लेफ्ट साइड, वहां से प्रकट, महालक्ष्मी जो लक्ष्मी नारायण के साथ है वो महालक्ष्मी है। और जो महालक्ष्मी से ही की जो स्वरूप है वो राजलक्ष्मी है। हम जो बहुत ही संसार में जो राजे महाराजे देखते, बड़ा बड़ा साम्राज्य होता है, करोड़ों करोड़ों अब्जोपति होते हैं, तो जो राज ऐश्वर्य जो प्राप्त होता है वो राजलक्ष्मी से प्राप्त होता है। वो कौन है? महालक्ष्मी के अंश है। और जो राजलक्ष्मी है उनकी अंश है मर्त्यलक्ष्मी। जो इस भक्ति संसार में हम देखते हैं, जब दीपावली आते हैं तो लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, सारे दरवाजे खिड़कियां खुला रखकर कहीं से ता जाओ। तो ये मर्त्य लक्ष्मी है जो इस भौतिक संसार में सर्व सामान्य जीवों को जो ऐश्वर्य देती है, ये मर्त्य लक्ष्मी। तो श्रीमती राधारानी के केश रंध्र से गोपियां प्रकट होती हैं, उनके वाम भाग से महालक्ष्मी जो नारंग के साथ रहते महालक्ष्मी उसे उनके वाम भाग से प्रकट होती है। उनके अंश जो है राजलक्ष्मी और उनके अंश जो है मर्त्य लक्ष्मी है। इस प्रकार से श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है। खाली जैसे कोई किसी की छाया है वो उस व्यक्ति से अभिन्न है। वो जहाँ जाएगा वो छाया जो है उसके साथ जाते रहेगी। तो आज जो है श्रीमती राधारानी का प्राकट्य दिन है, बर्थडे है। तो राधारानी महामहोत्सव की, राधाष्टमी महामहोत्सव की। तो श्रीमती राधारानी इस भूतल पर प्रकट होते अलग अलग रूप से प्रकट होती हैं। इसको कल्प भेद भी कहते हैं कि कल्प भेद मतलब ब्रह्मा जी के दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 14 मन्वंतर का, उसे कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन में अलग अलग बार जो है भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं। तो एक बार जब प्रकट होते हैं तो अलग रूप से प्रकट होते हैं, दूसरे बार प्रकट तो अलग रूप से प्रकट होते, कभी कभी एक जैसे प्रकट हो सकते हैं, तो स्वतंत्र है, सुराट है। तो एक बार का वर्णन आता है कि कैसे श्रीमती राधारानी प्रकट होती है। श्री रूप गोस्वामी ललित माधव ग्रंथ से पूर्णमासी जो गार्गी है, गर्ग मुनि की पुत्री है, उसे इसका वर्णन करते हैं। पूर्णमासी कैसे श्रीमती राधारानी प्रकट होती है, तो एक बार की बात है कि विंध्य पर्वत जो है इसको थोड़ा हिमालय के साथ स्पर्धा हो रही थी, थोड़ी सी जलन भी हो रही थी, ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि हिमालय के पास जो है कंदरे है, गुफा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या था कि उनकी जो पुत्री है कौन, पार्वती, पर्वत से प्रकट हुई हिम, तो ये पार्वती उनकी पुत्री है। और उससे भी बढ़कर क्या है कि उनके दामाद शिव जी है, भगवान शिव उनके दामाद है। इसलिए हिमालय का जो ऐश्वर्य है पहले से है, लेकिन उनकी पुत्री और दामाद की वजह से हिमालय का जो गौरव जो है पूरे सृष्टि में बहुत ही सब जगह पर उसकी चर्चा होती है। अनेक ऋषि माने जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी लय होती है, कैलाश वहाँ पर है। ये सारा देखकर जो है थोड़ा विंध्य को, पर्वत को लग रहा था कि मुझे भी कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए। दुख हो रहा था कभी कभी जब हम अपने से और ज़्यादा किसी के पास है तो थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा कठिन जाता है। तो भक्ति में आने के बाद भी कभी कभी ज़्यादा किसी का स्थिति हो जाता है अपने सामने, तो लगता है मैंने भी कुछ कम नहीं किया है, लेकिन मेरे बारे में कोई पूछता ही नहीं है। तो ये जो है ये स्वाभाविक है भौतिक संसार में जो बद्ध अवस्था में, और खास करके कलयुग के लक्षणों में तो सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। जब एक बार युधिष्ठिर महाराज को कोई मिलने आए तो भीमसेन बाहर दरवाजे पे पहरा कर रहे थे, तो भागते भागते आता है और कहता है कि मुझे अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, मैंने अपने क्या आश्चर्य देखा, मैंने देखा कि मेरा खेत का जो बांध है वो दूसरे का खेत खा रहा है। मेरा जो खेत का जो बाउंड्री होता है ना, वो दूसरे का खेत खा रहा है। कॉलम में उल्टा होता है, वो कोई कंप्लेन नहीं करता, अपने आप सरकते जाता है। लेकिन वहाँ द्वापर युग है तो उसमें वो बता रहे कि मेरा जो बांध है वो दूसरे के खेत में जा रहा है या खेत खा रहा है। तो हिमसेन कहते हैं कि क्या उसको तोड़ना है, क्या वापस आने, नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार से फिर बाद दूसरा व्यक्ति आता है, कहते कि मैंने देखा है कि एक व्यक्ति सुई के छिद्र से हाथी पार कर रहा है लेकिन पूछ अटक गई है। बोले ऐसा कैसे हो गया। बोले नहीं मैंने देखा है हाथी पार हो गया लेकिन पूछ अटक गई। बोले कैसे हो गया। बोले कि हाथी को पतला कर रहा है। नहीं नहीं ऐसा क्यों। तो और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन शॉर्टकट में हम लेते हैं। तो जब ये युधिष्ठिर महाराज के पास उसको बोलते आप आपको आंसर चाहिए तो युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए। जैसे वो पहुंचते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, युधिष्ठिर महाराज तो कि चलो अपना बुरा बिस्तर लपेटो और चलो। बोले क्या। बोले कि कलयुग के लक्षण है। बोले क्या है जरा बताओ ठीक से। बोले कि पहला क्या है कि उसका जो बांध है दूसरे का खेत खा रहा है, मतलब ये लक्षण है कि अपने पास जो है उसमें संतुष्टि नहीं है। तो कलयुग का एक लक्षण है अपने पास जो इसमें संतुष्ट है, हमेशा दूसरे के घर में क्या चल रहा है, दूसरे के पास क्या है, उसका क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, अपने पास उसके बारे में सोचते नहीं है। और दूसरा एक जब देखा कि हाथी पार होता है लेकिन पूंछ अटक जाती है, तो बोलते हैं कि कलयुग का एक लक्षण और भी है कि जब भौतिक चीजें करनी है हाथी पार हो जाएगा, लेकिन आध्यात्म कुछ करना है पूंछ अटकेगा। भौतिक संसार में अगर बाहर देखो बहुत ही चीजें करने के लिए, टाइम पास करने के लिए समय ही समय है। गेम्स खेलेंगे, टीवी देखेंगे या टाइम पास करेंगे, गली के कोने में खड़े रह के गप्पे मारेंगे, घंटों तक चलता है, कोई प्रॉब्लम है। अगर आप कहो कि हफ्ते में एक बार सत्संग होता है गांव में, आप आइए, तो बोलेंगे प्रभु जी इतना व्यस्त टाइम है, इतना बिजी चल रहा है कि मरने के लिए टाइम नहीं है, इतना बिजी लाइफ है, इतना व्यस्त है, टाइम ही नहीं है। मतलब भौतिक चीजें करने के लिए अब देखिए हजारों लाखों रुपया खर्च हो जाएगा भौतिक एंजॉयमेंट करने के लिए। आप कहोगे अभी जन्माष्टमी आ रही, थोड़ा चंदा कुछ डोनेशन देंगे। मतलब आजकल कोरोना के बाद इतना मंदी आ गया है कि पैसा ही नहीं है नहीं। तो भौतिक चीजों के लिए हत्ती पार हो जाता है लेकिन अध्यात्म के लिए पूछा रहता है, कलयुग का लक्षण है। तो यहाँ विंध्य पर्वत जो है वो चाहता है कि मुझे भी ऐसे बेटी चाहिए, पुत्री चाहिए जिसका पति शिव जी को भी हरा सके। तो क्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। कौन, विंध्य पर्वत। इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी राजहंस पर आकर उनको मिलते हैं। कहते कि वत्स इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या वर चाहते हो आप। तो कहते कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिनका पति शिव जी को भी हरा, उनसे भी श्रेष्ठ हो। तो ब्रह्मा जी तो इतनी कठोर तपस्या की थी कि इतने प्रसन्न थे तो कह दिया कि तथास्तु। तो इसलिए कहते हैं कि आप बड़े खुश हो ना तो कभी किसी को वचन नहीं देना, और गुस्से में हो तो कोई निर्णय नहीं लेना। तो बहुत बार जो प्रसन्नता में कोई बोल बे, तो ब्रह्मा जी ने वर तो दे दिया कि तथास्तु, लेकिन बाद में सोचने लगे कि होगा कैसा। लेकिन कि शिव जी को हराने की कोई आसान चीज नहीं है, शिव जी को हरा, महादेव है, उनको कौन हरा सकता है। तो सोच रहे सोच रहे, फिर बाद में याद आया, अरे हाँ कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण लीला भी द्वापर में होने वाले, तो चलो कुछ चर्चा करते हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो तभी कृष्ण को मनाना इतना आसान नहीं है लेकिन राधा रानी को मना सकते हैं, क्योंकि राधा रानी जो है करुणामयी है, करुणा का स्वरूप है, दया का स्वरूप है, कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम स्वरूप है, तो ब्रह्मा जी कृष्ण के पास नहीं जाते हैं उनको मनाने के लिए। किसके पास जाते हैं? राधा रानी के पास जाते हैं। श्रीमती राधा रानी के लिए ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, और जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है तो क्या छे आप इतनी क्यों तपस्या, अभी तो सृष्टि निर्माण सब कुछ हो गया, सब ठीक चल रहा है। नहीं नहीं, अभी बड़ी तो समस्या आ गई है कि आप प्रकट होने वाले हैं, तो ये लीला में एक और थोड़ा ट्विस्ट आएगा। लिखा कि आप तो, आपके जो शाश्वत माता पिता तो ऋषभानु महाराज और कीर्तिदा है, लेकिन इस बार विंध्य उसकी जो पत्नी है उसके द्वारा प्रकट होना है। तो श्रीमती राधा रानी उनकी तपस्या से प्रसन्न होती है, कहते कि ठीक है, तथास्तु, जैसे आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। और फिर बाद में योग माया के द्वारा जो है, जो चंद्रभानु और ऋषभानु दोनों की जो पत्नियां गर्भवती है, दोनों के जो गर्भ है उसको स्थलांतरित करते हैं योग माया के द्वारा, और विंध्य पर्वत जो है उनके जो पत्नी है उसके गर्भ में दोनों को वो स्थलांतरित करते हैं, चंद्रभानु और ऋषभानु महाराज की जो पत्नियां हैं, रानियां हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो वहाँ विंध्य पर्वत की जो पत्नी है वो दो बेटे पुत्रियों को जन्म देती है, और उसके बाद जो है यहाँ उस समय में उस पहले ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कहाँ? मथुरा में, कंस के कारागृह में कृष्ण प्रकट हुए, और वहाँ पर भगवान कृष्ण प्रकट होते ही वसुदेव से कहते कि आप मुझे गोकुल में छोड़ कर आओ, जहाँ यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। तो वसुदेव जाते हैं, कृष्ण को वहाँ रखते हैं, यशोदा ने जो पुत्र को जन्म दिया है योग माया को उसको ले आते हैं, और जैसे कंस को पता चलता है कि आठवां पुत्र जन्मा है, कि आकर देखता है तो पुत्र नहीं पुत्री है, तो गुस्सा हो जाता है। तो ये क्या है, मुझे लगा नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते होंगे, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र आपका विनाश के लिए कारण होगा, लेकिन यहाँ तो देखा पुत्री है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि पुत्र तो प्रकट होकर ऑलरेडी दूसरी जगह गोकुल में चले गए थे। तो जैसे गुस्से में उसने वो पुत्री को लिया और जोर से अपने वो पत्थर के ऊपर पटकने वाला है, उतने में वो पुत्री जो है वो कौन थी, योग माया थी, वो उसके हाथ से निकल गई, आकाश में जाकर जो है अष्टभुजा रूप धारण करके वो कहती है, कह रहे मूर्ख कंस, तुम जानता नहीं कि तुझे मारने वाला पहले ही प्रकट हो चुका है, पहले ही इस धरातल पर आ चुका है, और आज जो है मेरे से भी शक्तिशाली जो आठ शक्तियां जो है वो प्रकट हो गई है, राधा, चंद्रावली, पद्मा, भद्रा, शक्तियां जो है मेरे से भी शक्तिशाली शक्तियां जो है प्रकट हो चुकी है, और तुम पिछले जन्म में काल निमित्त था, और वही विष्णु जो आपको मारा था वही कृष्ण जो है अभी धरातल पर प्रकट हुए, आपका विनाश होना ही है। तो इस प्रकार जब अष्टभुजा जो देवी योग माया आकाशवाणी करती है तो कौंस इतना क्रोधित हो जाता है, वो कहता है कि एक महीने के अंदर जितने भी बच्चे जन्म आए हैं उनको पूरी तरह से खलास कर दो, और जितनी पुत्री है सबको इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ। इस प्रकार से वो घोषणा कर देता है, और सारे असुर जो है यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, और उसमें से विशेष करके जो पूतना है उसको भेज देता है। तो पूतना को पता है किस प्रकार से, पूतना जो काल कुष्ठ विष लगाकर जो है जाकर बच्चों को मारती है, तो वो पूतना जैसा उसको पता चलता है, क्योंकि वहाँ विंध्य पर्वत जो इतना खुश हो गया था, उसने वो बच्चे के संस्कार के लिए दोनों पुत्र जो वहाँ प्रकट हो गए उनके संस्कार के लिए बड़ा महोत्सव रखा। नंद महाराज ने छुप के सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इससे विंध्य ने जो है संस्कार के लिए जब वहाँ समारोह रखा तो पूतना वहाँ पहुँच गए। विंध्य की पत्नी दोनों पुत्रियों को लेकर यज्ञ में बैठी है, बड़े बड़े पुजारी जो है यज्ञ मंत्र वहाँ जप कर रहे हैं, उतने में देखते देखते पूतना ने दोनों पुत्रियों को उठाया विंध्य के पत्नी के गोद से, और कुछ क्षणों में ही ऊंचा आकाश में वो चल बसी। तो यहाँ विंध्य इतना चिंता में हो गया, सब सारा सैनिक जो है इतने उसके पीछे भागने लगे, लेकिन देखते देखते पुतना जो है आकाश मार्ग से निकलने गए। तो विंध्य इतना क्रोधित हो गया, इतना टेंशन में आ गया, तो उसने जो पुजारी थे, यज्ञिक थे, उनको कहा कि उसको मारने के लिए मंत्र बोलो, जो पुतना जो उसको मारने के लिए मंत्र बोलो। तो जैसे उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया तो पुतना का शक्ति जो है कम कम होने लगा। जैसे ही उसका शक्ति कमजोर होने लगा तो दोनों पुत्र को संभालना उसको मुश्किल हो गया। तो भ्रमण आकाश मार्ग से भ्रमण करते करते वो महाराष्ट्र में विदर्भ राज के ऊपर से जब जा रहे थे तो उतने में एक पुत्र जो उसके हाथ से छटक गए, नीचे गिर गए, वहां नदी में गिरे। तो वहां के जो राजा थे, विदर्भ के राजा भीष्मक महाराज, उनको पुत्र प्राप्त हो गए। उन्होंने बहुत अपने पुत्र की तरह उसका संगोपांगन किया, 5 वर्ष तक वो वहां पर रहे। और उसके बाद वो आगे चलते चलते जैसे वो ब्रज के ऊपर से जा रहे थे तो वहां पर इतने कमजोर हो गए कि वो उड़ भी नहीं पा रहे थे आकाश मार्ग से, तो वो नीचे गिर गए। और जैसे ही नीचे गिरे तो उसके पास ये जो पुत्र थे वहां पर पूर्णमासी थे, माता पूर्णमासी पार्वती के ही अंश मात्र है। तो उन्होंने उसको लिया और मुखरा देवी जो है उसको उन्होंने ये पुत्री को दिया और कहा कि आपके जो दामाद है उनके ही पुत्री होगी। तो मुखरा देवी जो है ये कीर्तिदा माता की माता थी, तो उनको कहा कि आपके दामाद की पुत्री होगी। इस तरह से फिर उन्होंने ऋषभानु महाराज और कीर्तिदा को इनको दिया और वही श्रीमती राधारायण के रूप में उन्होंने उनका पालन किया। और जो लीलाएं जो है आगे हम देखते हैं। दूसरा भी एक वर्णन आता है कैसे श्रीमती राधारानी प्रकट होती है। एक बार सूर्यदेव जो है वो तपस्या कर रहे थे, किसलिए? वो चाहते थे कि भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, और वो जब प्रसन्न होते हैं तो पूछते क्या चाहिए आपको सूर्यदेव। तो कहते कि मुझे गोकुलेश्वरी श्रीमती राधारानी जो है वो पुत्र के रूप में चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते तथास्तु। और वही सूर्यदेव जो है भविष्य में वहाँ के जो गोप राजा थे, गोप राजा जो गोकुल महावन के राजा थे रावल के, तो वहाँ पर महाभानु करके राजा थे, उनके 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, ऋषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। ये 5 भाई जो है ये महाभानु के पुत्र थे। और खा विश्व इन सब में ऋषभानु जो है इतने सरल स्वभाव के सब इतने सद्गुणी थे कि स्वभाविक रूप से नंद महाराज के भी 5 भाई थे, लेकिन सबने मिलके जो उनको कि नहीं नंद महाराज ही राजा होना चाहिए, भले उपानंद बड़े थे फिर भी उन्होंने नंद महाराज को ही राज्य देना है। तो यहाँ पर भी ऋषभानु महाराज का जो स्वभाव था इतना सरल और प्रजा के प्रति जो प्रेम था, सद्भाव था, उसकी वजह से उनको राजा बनाया गया। और ये ऋषभानु महाराज ही सूर्यदेव है, भानुदेव, वही सूर्यदेव ऋषभानु महाराज के रूप में प्रकट होते हैं और वो राजर्षि की तरह व्यवहार करते हैं। राजर्षि मतलब जो राजा भी है और ऋषि भी है, अपने काया मनसा वाचा सब पे उनका काबू है, लोगों के प्रति सद्भावना है। और कई हजार उन्होंने राजस्वी यज्ञ किए ऋषभानु महाराज ने। और वहाँ पर बिंदु महाराज करके एक गोप थे और उनकी पत्नी मुखरा देवी, इनकी पुत्री थे कीर्तिदा। तो कीर्तिदा से उनका ऋषभानु महाराज का विवाह हुआ और कई वर्षों तक वो एक हमें भगवान की कृपा से पुत्री का पुत्री प्राप्त हुई। इसके लिए वो कहीं अलग अलग यात्रा किए, अलग अलग जगह पर उन्होंने यज्ञ किए, पूजा पाठ किया, तो अंततः कीर्तिदा माता कहती है कि क्यों नहीं हम कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। तो तभी उन्होंने यमुना किनारे जाकर कात्यायनी देवी की पूजा किए। तो जैसे ऋषभ महानु महाराज जब ये पूजा कर रहे थे तो उन्होंने कई महीनों तक मौन व्रत धारण किया, और इतना ही नहीं कई महीनों तक वो अन्न से दूर रहे, उपवास किया, अलग अलग प्रकार से व्रत करते रहे ताकि कात्यायनी देवी को प्रसन्न कर सके। और जब वो तपस्या कर रहे थे इस प्रकार से, उतने में उनको आवाज आती है और उसमें उनको ये वो दिव्य ध्वनि जो है वो कहता है कि हरिनाम वीना वत्स कर्ण शुधिर न जायते तस्मात् श्रेयस्कर राजन हरिनामानुकीर्तनम ग्रहान हरिनामानि यथा क्रमाम विनिंदिता। तो कहते हैं कि वो ध्वनि में वो बता रहे थे हरिनाम बिना वत्स कर्ण शुधिर न जायते, हरिनाम के बिना जो है ये जो कर्ण है वो उसका कभी शुद्धिकरण नहीं हो सकता, और कर्ण का शुद्धिकरण नहीं तब तक हमारे हृदय का भी शुद्धिकरण नहीं होता है। हरिनाम बिना वत्स कर्ण शुधिर न जायते तस्मा शेष कर्ण राजन हरिनामानुकृत। इसलिए हे राजन, आप तपस्या कर रहे हो किन कोई भी तपस्या जो है हरिनाम के बिना पूर्ण नहीं होती है, इसलिए आप तपस्या कर रहे साथ साथ जो है हरिनाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनको मंत्र दिया जाता है, क्या मंत्र दें, तो वहाँ से निकलते हैं और उनके जो आचार है उनके पास जाते हैं, कृतुम उनके आश्रम में हो जाते हैं, और कृतुम उनके आश्रम में जाकर उनसे पूछते हैं कि मुझे दिव्य ध्वनि आवाज आया लेकिन मंत्र क्या जप करना है। तो कृतुम अनुजय उनको मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोषकम नामात्कम नात्मनाम त्रिकाल कल्मना शापहम नात परतरोपाय सर्वेदेषु दृश्यते। कहते कि जो इति शोषकम, हम कली चंद्र उपनिषद में भी ये मंत्र पढ़ते हैं, यहाँ पर भी जो है बताया गया है कि तीर शोकशकम नामात्मकम नात्मानम। ते जो 16 अक्षर जो मंत्र है, त्रिकाल कल्म शापहम, त्रिकाल कि जो भी हमारे पाप कर्म है वो पाप कर्मों से भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में कभी भी अगर कुछ हमसे पाप कर्म हुए हैं वो सबसे हमें मुक्त करा सकता है। और जो महामंत्र है हमें इस भौतिक बंधन से शुद्ध करके हमें मुक्त करा सकता है। महामंत्र का अर्थ है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मतलब भगवान की शक्ति, हम जब महामंत्र जप करते हैं तो हम भगवान की शक्ति श्रीमती राधारानी से प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीमती राधारानी, हे जिस प्रकार से हम निरंतर भगवान कृष्ण की सेवा में है उसी प्रकार हमें भी सेवा में लगाइए। और जब हम सेवा करते हैं तो क्या होता है, भौतिक जो हमारे आसक्ति है, ये भौतिक शरीर से जब सेवा करते हैं तो हमारे आसक्ति अभी जो है भौतिक संसार में है, लेकिन ये शरीर से जब सेवा करते हैं तो अपने आप ही हमारे आसक्ति क्या हो जाती है, जिसके प्रति सेवा करते हैं उसके प्रति हमारे आसक्ति बढ़ती है। जैसे हमारे घर के प्रति है, हमारे नाते संबंध के प्रति, हमारे मित्र परिवार के प्रति हमारे आसक्ति है, अटैचमेंट है, क्योंकि उनके लिए हम सेवा करते हैं, उनके लिए हम मेहनत करते हैं। वही मेहनत जब हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो हमारी आसक्ति अटैचमेंट जो है भगवान के प्रति बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक संसार ने हमें पकड़ा नहीं है, हमने उनको पकड़ा है। तो एक बार एक कथाकार कथा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आते हैं, बड़े सेठ है, वो कहते हैं कि महाराज मुझे बचाइए, मुझे मुक्त कीजिए, मैं इस भौतिक संसार के मोह जाल में फंसा हूँ, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। तो कथाकार अपने आसन से उड़ गए, उनका वो आक्रोश रोना सुनकर वो आसन से उड़ गए और जोर से चलने लगे। चलते चलते थोड़ा आगे गए, मंदिर के बाहर आंगन में वहां पर एक पेड़ था, तो उन्होंने उसको पेड़ को पकड़ लिया। किसने? वो महाराज जी ने, कथाकार जी, उन्होंने पेड़ को पकड़ लिया। तो बाद में सारा श्रोतागण भी उड़ गए, लेकिन महाराज चले गए तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो भी उनके पीछे चले गए। जैसे वहां बढ़ते बढ़ते आगे देखा तो वो महाराज, वो जब देखा श्रोतागण वहां पहुंचे है तो उन्होंने पेड़ को पकड़ा है, जो कथाकार थे उन्होंने, जैसे लोग पहुंचे वो करने के लिए जोर से कहने लगे, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, पेड़ ने मुझे पकड़ा है, मुझे छोड़ो, मुझे छुड़ाओ, पेड़ ने मुझे पकड़ा है। तो सेठ जी होते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज, आपने पेड़ ने आपको पकड़ा नहीं है, आपने पेड़ को पकड़ा है। तो महाराज कहने लगे, वैसे इस भौतिक संसार ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने उसको पकड़ा है। हम कहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, तो हम कहते हैं उन्होंने हमको नहीं पकड़ा है, हमने उनको पकड़ा है। इसकी वजह से इस संसार में दुख जो है भुगतते रहते हैं। तो यहाँ कात्यायनी देवी जो है प्रसन्न होती है, जब इस प्रकार से ऋषभानु महाराज मंत्र जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो कात्यायनी देवी प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर उनको साक्षात स्वरूप जब कात्यायनी देवी का उनके सामने आता है तो ऋषभानु महाराज को बड़ा आनंद होता है, कात्यायनी देवी स्वयं प्रकट हुई है। तो कात्यायनी देवी कहते कि हे वत्स, आप क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए, क्या वर चाहते हैं? तो उनका स्वरूप देखकर ऋषभानु महाराज कहते कि मैंने तपस्या की थी लेकिन आपका इतना स्वरूप देखकर मुझे बड़ा आनंद है, कोई इच्छा नहीं है, और फिर भी अगर आप देना ही चाहते, आपको मेरी अंतर की इच्छा तो पता ही है, तो वैसे मैं संतुष्ट हूं। तो कात्यायनी देवी कहते हैं कि आपकी जो अंतर की इच्छा है, क्या इच्छा थी? उनको जो भानु महाराज थे, ऋषभानु महाराज, उनको गोकुलेश्वरी पुत्री के रूप में चाहिए थे। तो कात्यायनी देवी कहते कि जरूर आपकी जो इच्छा है ये पूर्ण होगी। और वो कात्यायनी देवी उनको सुवर्ण के गोलाकार जो पेट एक पेटी संदूक जो है उनको देते हैं, वो घर ले जाते हैं। और कुछ दिनों में जो है श्रीमती राधा रानी उनके घर में वहां पर प्रकट होती है। लेकिन आगे लीला हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है, नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। नारद मुनि वहां जब वृंदावन में पहुंचते हैं, चलो वृंदावन का भ्रमण करते हैं, दर्शन करते हैं, तो भगवान कृष्ण नंद भवन में गए, वहां अलग अलग, वहां देखा स्वयं कृष्ण है, बलराम है, और अलग अलग गोपों के घर में नारद मुनि जा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि दिव्य स्वरूपा श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है, भगवान की परम शक्ति जो है ये कहीं तो प्रकट हुई लेकिन कहाँ प्रकट हुई है, वो देख रहे थे। अलग अलग गोपों के घर में, नंद भवन में तो कृष्ण बलराम है, बाकी घर में जाकर ढूंढ रहे कि वो शक्ति कहाँ है। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते नारद मुनि ऋषभानु महाराज के वहां पहुंच जाते हैं और ऋषभानु महाराज को कहते हैं कि आपके यहाँ पर पुत्र प्रकट हुए हैं, पुत्री है, तो तुरंत वो श्रीदामा को दिखाते हैं। श्रीदामा राधा रानी के बड़े भाई हैं, तो श्रीदामा दिखाते हैं, तो बड़ा तेजस्वी है, दिव्यमान है। तो कहते कि ये जो है इसकी लीलाएं जो है अपरंपरा होगी, और खास करके कृष्ण और बलराम के बड़े विशेष मित्र बनेंगे। और कहते कि क्योंकि ऋषभानु महाराज कृतिदा किसी को बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो पुत्री प्रकट हुई थी वो बोल नहीं रहे थे, आंखें खोल नहीं रहे थे, अभी पुत्र है, पुत्री है, बोलते नहीं है या आंख नहीं खोलते, तो माता पिता को बड़ा दुख होता है कि कैसे लोगों को बताए। तो ऐसी अवस्था में ऋषभानु महाराज कृतिदा भी किसको बता नहीं रहे थे, तभी नारद मुनि बार बार पूछते हैं, आपके यहाँ पुत्री भी प्रकट हुई है, कन्या रत्न भी प्रकट हुआ है। देखिए हाँ नारद मुनि, मतलब कभी कभी अनिच्छा से बोल देते हैं हाँ नारद मुनि, तो बोले कि ठीक है मुझे दिखाओ। तो बताते कि बोलती नहीं है, आंखें नहीं खोलती है, तो कैसे किसी को दिखा सकते। तो नारद मुनि कोई भी चिंता नहीं, जैसे नारद मुनि को ले जाते हैं और नारद मुनि के हाथ में उनको देते हैं, वो कन्या रत्न को जैसे नारद मुनि स्पर्श करते हैं, उनके अंदर वो एक दिव्य भाव प्रकट होने लगते हैं और नारद मुनि उनको देखकर ही इतनी सुंदर प्रार्थना करने लगते हैं कि हे आप तो कृष्ण के प्राण वल्लभा है, आप कृष्ण को ही आनंद देने वाले, कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति है, आनंद स्वरूपिणी है, ईश्वरी है, वृंदावनेश्वरी है, अलग अलग प्रकार से उनको प्रार्थना करते हैं। और भगवान कृष्ण के जो गौरव है, भगवान कृष्ण का जो गौरव है उसमें ही आपको आनंद होगा, इस प्रकार राधा रानी का वो स्तुतिगान करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर और जैसे नारद मुनि देखते हैं राधा रानी को प्रार्थना कर, देखिए मैं पात्र नहीं हूँ फिर भी आपके शाश्वत दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, तो नारद मुनि प्रार्थना करते हैं। तो जैसे प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा ने, जो उनका शाश्वत स्वरूप है, किशोर वयस 14 वर्ष का, वो जो गोलोक वृंदावन में सदैव उनका जो शाश्वत स्वरूप है वो नारद मुनि के सामने प्रकट करती है श्रीमती राधा ने। और नारद मुनि बड़े प्रसन्न भाव में नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, और बाकी सब जो है ऋषभ बनवार उनको को समझता है कि नारद मुनि को हुआ क्या है, यहाँ पर इतने प्रसन्न इतने आनंद के लिए कि नारद मुनि जो है वो सारा दिव्य स्वरूप जो है लीलाएं जो है देख पा रहे थे। और फिर देखते देखते वहाँ ऋषभानु महाराज और कीर्तिदास जो है उन्होंने जहाँ की पुत्र रत्न अभी नारद मुनि आए हैं, उनका कहा कि आप ऐसे छुपा के मत रखो, तो उन्होंने सारे ब्रजवासियों को बुलाया और उनके जो खास मित्र थे नंद महाराज और यशोदा माता उनको भी उन्होंने बुलाया। और जैसे ही ये सब वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, चर्चा करते करते कृष्ण देखते हैं कि यशोदा और कीर्तिदा बातें करने में इतने रंग गए हैं, उनको कोई ध्यान नहीं कि कृष्ण कहाँ चले गए आ रहे, तो कृष्ण धीरे से जो है वहाँ उनके वहाँ से निकलते हैं और बाजू में जो रूम था जहाँ पर श्रीमती राधा रानी में पलने में झूल रहे थे वहाँ पर चले गए। और जैसे पालने के पास पहुँचते कृष्ण तो पालने को पकड़ते हैं, अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और तुरंत वो राधा रानी का जो पालना है उसमें देखते हैं। और देखते श्रीमती राधा रानी जी को उनका स्पर्श होते जान जाते कि तो ये मेरे परम आराध्य है, स्वयं कृष्ण यहाँ पर आए हैं। ये देखते ही श्रीमती राधा रानी रोने लगती है, आंखें खोलती है, क्योंकि इसको कहते हैं नेत्रों मिलनम, नेत्रों मिलनम पहला दर्शन जो, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ये सिखाती है अपने प्राकट्य से ही, प्राकट्य लीला से ही, कि जब अगर भक्ति करनी है तो हमें कृष्ण के प्रति अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, अगर भक्ति करनी है तो साधक के जीवन में जो है अनुकूल संकल्प जो हमें भक्ति करने के लिए अनुकूल है उन चीज़ों का स्वीकार करना चाहिए, जो प्रतिकूल विवर्जनम जो प्रतिकूल चीज़ें हैं भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, उसको हमें उसे दूर रहना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जब तक कृष्ण नहीं मिले तब तक राधा ने आँखें नहीं खोली, तब तक उन्होंने जो सुनना है देखना है सब कुछ राधा रानी का बनता, लेकिन जैसे कृष्ण को देखा स्पर्श हुआ तुरंत राधा रानी रोने लगी, आंखें खुली, तो वहाँ पर बड़ा उत्सव जो है मनाने लगे, क्योंकि आज पहली बार जो है राधा रानी रो रही है। और जब थोड़े दिन के बाद राधा रानी के लिए अन्नप्राशन करना था तो सोच रहे थे कि अन्नप्राशन के लिए जो संस्कार करते हैं, तो ऋषभानु महाराज राधा रानी के 7 महीने हुए हैं तो सोचते कि राधा रानी का अन्नप्राशन करना है, तो इतने में नंद भवन जाते हैं। नंद भवन पहुंचते ही सारे जो सगे संबंधी आए हैं, चर्चा हो रही है, देखते देखते कृष्ण वहां पर कुछ भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, राधा रानी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं राधा कृष्ण के प्लेट से उठाकर भोजन कर लेते, मतलब जो हिमालय वो खा लेती है। तो मतलब देखना है तो कृष्ण को देखना है पहली बार, खाना है तो पहले कृष्ण प्रसाद ही खाना है। तो इसलिए इस हम लोग देखते संस्कार जो अन्न प्राशन संस्कार है उसमें भी जब हमें अन्न प्राशन संस्कार करते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि किस प्रकार से हमें हम जो खाते हैं उसको पचाने के लिए जो अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित कि अहम वैश्वानर जो वैश्वानर अग्नि है पेट में जो हम जब खाते हैं तो जो पचाने के लिए जो अग्नि लगता है उसको जठराग्नि जो वैश्वानर अग्नि है कृष्ण के अहम वैश्वानर भूत्वा सब जीवों के अंदर जो जठराग्नि वो मैं हूँ इसलिए कोई भी जीव जो है कृष्ण प्रसाद के बिना कुछ खाना नहीं चाहिए वैसा देखा जाए तो क्योंकि अगर पचाने के लिए अग्नि ही अगर कृष्ण है तो पेट में भी जो जाना चाहिए वो खाली कृष्ण प्रसाद ही होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ श्रीमती राधारानी देखते हैं किस प्रकार से पहला जो निवाला है और कुछ अन्न प्राशन के लिए वो चाहते नहीं है तो कृष्ण प्रसाद ही राधारानी वहाँ प्रथम उसका स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो है इतना श्रीमती राधारानी से प्रेम करते हैं उनकी इतनी श्रेष्ठता है कृष्ण को ही वो आकर्षित करते हैं। तो एक बार यहाँ कृष्ण राधारानी की श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं तो जब पौगंड लीला उनकी हो रही थी उस समय वो जो है राधारानी से कहते हैं कि आप सर्वप्रथम जो है सर्वश्रेष्ठ पूजा आपकी है अगर कोई मुझे पूजा करता है आपके बिना अगर मुझे कोई पूछता है उसको मैं स्वीकार नहीं करता। भगवान कृष्ण स्वयं राधारानी से कहते हैं और जो आपका दिया हुआ मार्ग है उसको स्वीकारता है वो मुझे बड़ा प्रिय होता है। इस प्रकार से कहते हैं कि आप इतने श्रेष्ठ हैं कि यशोदा से भी श्रेष्ठ है। तो राधारानी कहते हैं कि आप तो बड़े लंपट हो बातों बातों में झूठ बोल देते यशोदा आपकी माँ है और आप कहते हैं कि उनसे भी आप श्रेष्ठ है। बोलते मैं सच कह रहा हूँ कौन कृष्ण मैं सच कह रहा हूँ कि वही है आप देखना यशोदा आपके पैर पकड़ेगी। तो बोलते कैसे हो सकता है वो मैं उनकी पुत्री की तरह हूँ ऐसे कैसे वो मेरे पैर पकड़ सकते हैं। लेकिन कृष्ण ये सब दिखाने की लीला करते हैं। एक बार जो है बाहर देखते हैं कृष्ण पूरा दिन गैया चरा कर आते हैं और अचानक वो आवाज़ आता है नाच गाने का आवाज़ आता है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के म्यूजिक बज रही है वाद्य बज रहे हैं वहाँ नृत्य चल रहा है। तो राधा यशोदा मैं जाकर देखते हैं कि वहाँ पर उनका रास चल रहा है गोपियाँ नाच रहे कृष्ण नाच रहे तो यशोदा उनको डांटती है राधा रानी को बाकी ललिता विषय को डांटते हैं कि आपको समझता नहीं कृष्ण पूरा दिन गया चरा कर आते हैं थकते हैं चलना पड़ता है गयों के पीछे और वापस रात को आप उनको नचाती है आपको कुछ लज्जा नहीं आती आपको शर्म नहीं आती कितना उनको थके हैं पूरा दिन ऊपर से उनको रात को नाचते हैं नचाते हैं। तो बोलते तो राधा रानी कहती कि मैया ये आपके कृष्ण नहीं है फिर ये कौन है आपके कृष्ण तो वहाँ पे वहाँ सो रहे हैं बेड में जाकर देखिए। बोले सच में तो यशोदा जाकर देखते है तो सच में वो कृष्ण वहाँ पर सो रहे हैं। तो बोले यहाँ ये भी बात सही है कि वहाँ पर बेड में भी सो रहे हैं यहाँ पर रास में भी नाच रहे हैं। तो यशोदा के मन में हाँ वो विश्वास हो गया कि ये अलग कृष्ण है। फिर बाद में यशोदा के मन में एक विचार आता है क्यों नहीं दोनों कृष्ण साथ में नाचे तो कितना आनंद आएगा। तो राधारानी कहते वो बात सही है लेकिन अगर दोनों मिक्स हो गए तो क्या करेंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा मेरा कृष्ण है उसके ऊपर मैं पीला एक तिलक लगा के रखती हूँ ताकि वो मिक्स नहीं होंगे। तो ऐसे करते हैं दोनों यशोदा उनको उठाती है और दोनों कृष्ण है रास में नाचने लगते हैं गोपियाँ नाच रहे कृष्ण नाच रहे और इतना आनंद हो रहा है अचानक देखते देखते यशोदा के कृष्ण गोपियों के कृष्ण में मिक्स हो गए विलीन हो गए। तो यशोदा कहने लगी कि अरे अभी नाच रहे दोनों नाच रहे थे अचानक से एक कहाँ गायब हो गए। लेकिन जो तिलक लगा राधा ने तिलक लगाया तो वो नाच रहे वो बाकी यशोदा के जो कृष्ण आए थे वो गायब हो गए। तो यशोदा लेकिन ऐसे कैसे हो गया तो मेरे कृष्ण मुझे वापस दे दो। तो राधा ने कहते हमने पहले ही आपको कहा था कि कुछ अगर एक दोनों मिक्स हो गए तो क्या करेंगे। तो बोलते नहीं नहीं कुछ भी करूं लेकिन कृष्ण के बिना मैं जी नहीं सकती, कृष्ण के बिना जो है मेरा जीवन जो है मैं मर जाऊंगी, मुझे कृष्ण वापस है, मुझे कृष्ण वापस है। और इतने राधा यशोदा मैया रोने लगी। आखिर में यशोदा कहती कि हे राधे, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे मेरे कृष्ण दे दो, मुझे मेरा कृष्ण दे दो, मेरा कृष्ण दे दो। तो कृष्ण देखकर राधा रानी की ओर देखकर हंसने लगते हैं। मैंने कहा था ना कि यशोदा तुम्हारे पैर पकड़ सकते, तो राधा की इतना मत करो, ये ठीक है लेकिन एक यशोदा राधा रानी कहते कि मैं आपकी पुत्री की समान हूँ, कैसे आप मेरे पैर पकड़ते हो, खास करके इतने मुझे निचले इसमें मत देखो कि मैं कुछ आपके जीवन में ऐसा करूं कि ताकि आपको मुझे पैर पकड़, आप ब्रज की रानी है, महारानी है, हम आप सबकी दासियां है, ऐसे कैसे कर सकते आप हमारे पैर पकड़ेंगे, नहीं हो सकता। तो कृष्ण तो ऐसा रोते बिलखते यशोदा मैया जो है बेहोश हो जाती है। तो फिर राधा रानी कृष्ण की ओर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलते कि अभी एक काम करो, यशोदा के कान में जाकर कहो तुम्हारे कृष्ण आ गए हैं, बेड में जाकर सो गए हैं। तो जैसे राधा रानी जाकर यशोदा मैया के कान में जाकर कहते कि आपके कृष्ण आए हैं और वहां पर जाकर बिस्तर पर जाकर सो गए हैं, तो यशोदा तुरंत उठ जाती है, कृष्ण आ गए सुनते तुरंत उठ जाती है और जाकर भाग कर जाती है और देखते हैं बिस्तर में पेड़ पे कृष्ण सो रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ये दिखाते हैं कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी का जो स्थान है सर्वोच्च है, वो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन कृष्ण न लभ्यते। ये बार बार जो है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन कृष्ण न लभ्यते। राधा रानी के प्रसाद के बिना जो है कृष्ण को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो राधाष्टमी उत्सव है, राधा रानी का प्राकट्य दिन है, आविर्भाव दिन है, इस दिन हम श्रीमती राधा रानी जो है करुणामयी है, भगवान कृष्ण का प्रेम स्वरूप है, हम डायरेक्टली जाकर इसलिए हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी जो है जो हम जाते हैं और कृष्ण के प्रति डायरेक्टली अगर जाते हैं तो कृष्ण कहते मैं नहीं पहचानता, लेकिन श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं और उनसे कहते कि मैं तो पतित हूँ, मेरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, मेरा जो मंत्र करता हूँ वो ठीक नहीं है, जो भक्ति करता हूँ वो ठीक नहीं है, अपात्र हो लेकिन कोशिश कर रहा हो, हे श्रीमती राधा रानी कृपा करके आपके चरणों में लीजिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण जब हम कृष्ण के पास जाते श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि थोड़ा संघर्ष है लेकिन अच्छा है, स्वीकार कर लो हा? तो जैसे श्रीमती राधा रानी कहते हैं तो कृष्ण मना नहीं कर सकते। बहुत ही संसार में हम देखते हैं ना, जब जोड़ी हो पति पत्नी साथ हो, हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं और माताजी ने बोल दिया घर में है भगवद गीता पहले से, तो हिम्मत नहीं कि वो भगवद गीता ले लेगा। और जब हम माताजी ने अगर बोल दिया कि रखते अपने पास भले घर में है, बोल दिया ना ले लेते हैं, किसी को शादी में देने में काम आएगा, बर्थडे में गिफ्ट दे देंगे, हाँ ले लो दे दो, तो वहां से आ रहे हैं। तो जैसे श्रीमती राधा ने बोल देती है कि इसको आप स्वीकार कर लो, ये बहुत ही प्रामाणिक है, प्रामाणिकता से कम 16 माला करने का कोशिश करता है, बड़ा मन वहां वहां या चंचल है लेकिन कोशिश तो कर रहा है, रोज 16 माला करता है। तो कृपा करके तो इस तरह से जब हम श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं तो वही हमें कृष्ण के चरणों को प्राप्त करा सकते हैं। और वही हम देखते हैं हमारे जो आचार्य श्रील प्रभुपाद गौर मोहनडे, उनका एक नियम था कि रोज 2-4 साधुओं को घर में बुलाते थे, वही रस्ते में दिखाई दिया साधु घर में भोजन के लिए बुलाते थे, और जब उनको रोज भोजन खिलाते थे और जब वो जाते थे तो साधु उनसे एक ही प्रार्थना करते थे कि मेरा पुत्र राधा रानी का बड़ा भक्त बने। श्रील प्रभुपाद की। तो वो गौर मोहन ने श्रील प्रभुमन के जो अभय चरण के लिए प्रार्थना करते थे साधुओं से कि एक ही प्रार्थना है, एक ही राधा रानी, आप प्रार्थना करो कि मेरा भक्त राधा रानी का भक्त बने। और हम देखते श्रील प्रभुपाद इतने भक्त बने, बड़े भक्त बने कि राधा रानी का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, सारे दुनिया में जहाँ कोई पात्र है या अपात्र है न देखकर सारे संसार में जो कृष्ण प्रेम है, राधा रानी का स्वरूप है, उसको उन्होंने प्रचार किया है। राधाष्टमी महामहोत्सव की। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा।